हम चर्चा कर रहे थे बाहु सच्चम की, माने श्रुति ज्ञान की। तो उन दिनों तो सुन करके ही ज्ञान प्राप्त होता था, आजकल तो देख करके भी, देख कर सुन कर दोनों प्रकार से, और दोनों प्रकार का पूरा पूरा उपयोग हो, इसीलिए निसर्ग ने कहें या परमात्मा ने कहें, हमें दो आंखें दी हैं और दो कान दिए हैं, इनका पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए। खूब पढ़ें, खूब सीखें, खूब याद करें, बड़ा कल्याण होता है। अच्छी अच्छी बातें इसलिए याद करें कि उसको जीवन में उतारेंगे, बुरी बात को इसलिए ख्याल रखें कि इससे हम दूर रहेंगे। भगवान के जीवन काल में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहाँ केवल आनंद ही नहीं, अनेकों को स्मरण शक्ति बहुत तेज थी अनेकों की। एक खुजुत्तरा जिसे अग्र की उपाधि मिली, खुजुत्तरा दासी है, एक रानी की दासी है। रानी धर्म सुनने नहीं जा सकती, वो सुनती है और आकर के वैसा का वैसा सुनाती है। स्मरण शक्ति बड़ी तेज है। जैसे भगवान ने अग्र की उपाधियां दी, 20 को अग्र की उपाधियां दी, अग्रपाल हुए, उनमें से 18 रहे, उनमें से ये भी एक है खुजुत्तरा, उसका परिवार भी अग्र कहलाया। स्मरण शक्ति की, उसकी स्मरण शक्ति तेज है, इसलिए उसे अग्र की उपाधि दी। याद रखना और फिर जीवन में उतारना। सम्मान इसलिए होता है कि धर्म जीवन में उतरता है, धर्म सदाचार में प्रकट होता है। अन्यथा हजारी याद कर लिया, वही सत्यम अवद धर्मंग चर, अब कहाँ, जब तक आचरण में नहीं उतरे तब तक कुछ नहीं, उसमें उतरना चाहिए। आचरण में उतर गया जिसके, वो सम्माननीय हो गया, जात पात नहीं देखी जाती। जहाँ शुद्ध धर्म है वहाँ जात पात का कोई महत्व नहीं, इस संप्रदाय उस संप्रदाय का कोई महत्व नहीं, व्यक्ति है। जो सदाचारी है वो सम्माननीय है। एक घटना, उस समय श्वेत केतु नाम का एक व्यक्ति तक्षशिला में जाकर के पढ़कर आया, बहुत विद्वान हुआ और इतना गर्व अपनी विद्वत्ता का, बहुत गर्व। सामने से एक चंडाल आया, उसे देख के चीखता चीखता है, अरे हवा भी तेरी ओर से आ रही है, तू भी मेरी ओर आ रहा है, तो ये तेज तुझको छू को जो हवा आ रही है वो मुझको अशुद्ध कर रही है। अरे शुद्धि अशुद्धि इससे नहीं होती भाई, ज्ञान है तुम्हारे में, कहा मैं पढ़कर आया हूँ, इतना विद्वान हूँ। तो शर्त लगी कि अच्छा, हम प्रश्न करेंगे, उत्तर ठीक दोगे तो तुम्हारी विजय हो गई, हार गए तो हमारी टांग के नीचे से गुजरना पड़ेगा। प्रश्न हुए, दिशाएं कितनी होती है, तो चार दिशा होती है। वो कहता चार नहीं होती है, छह होती है। और वो धर्म के आधार पर जो दिशाओं का वर्णन होता है वर्णन किया। बात पहुंची राजा के राजपुरोहित तक, जो बोधिसत्व था, आगे बुद्ध बनने वाला। उसने कहा बिल्कुल ठीक, ये जो चांडाल कह रहा है ये व्याख्या सही है दिशाओं की, तुम्हारी सही नहीं है। उसको नीचे देखना पड़ा। तो आचरण से धर्म ठीक से समझ में आए तो ना आचरण में उतरेगा। अब वो चंडाल है कि इस जाति का है कि उस जाति का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ओर तो ये कि अधिक से अधिक ज्ञान पढ़कर सुनकर देखकर अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, जीवन में उतरे, गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है। वो जहाँ तक शिक्षा का सवाल है मूर्ख ना रह जाए, खूब पढ़े। इसके साथ साथ कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि खूब पढ़ा है, जैसे आज की भाषा में कहें कि बीए कर लिया, कि एमए कर लिया, कि पीएचडी कर ली, क्या हुआ, काम में तो नहीं लगा। किस काम में लगे, तो शिल्प सीखना जरूरी, माने आजीविका के लिए हमें शिल्प सीखना बहुत जरूरी। आजीविका, कोई घर बार छोड़कर सन्यासी तो नहीं होने वाले, सारे गृहस्थ, गृहस्थ का जीवन जीना है और ये शिक्षा गृहस्थों को दी जा रही है, तो कोई ना कोई शिल्प, कितने प्रकार के शिल्प होते हैं, कारीगरी होती है, उनको सीखे। माने आर्ट भी और साइंस भी, टेक्नोलॉजी भी, सब में परफेक्ट हो, भारत की महानता थी। आज लोग पढ़ने के लिए जो वेस्ट जाते हैं, एक समय था जब भारत के विश्वविद्यालय सारे विश्व में प्रसिद्ध थे, लोग दूर दूर से आते थे, नालंदा, तक्षशिला, वहाँ पर ज्ञान सिखाया जाता था धर्म का। तक्षशिला में केवल ज्ञान ही नहीं, शिल्प सिखाया जाता था, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, युद्ध की कला सिखाई जाती थी, आयुर्वेद सिखाए, और ये तो बुद्ध के पहले की बात है, तब से तक्षशिला प्रसिद्ध थी। ऐसी हस्तकला भारत में उस समय थी, ऐसी ऐसी हस्तकला कि विदेशों में निर्यात होता था भारत से, दूर दूर तक हाथी दांत पर कला, कि तांबे की कला, कि सोने की कला, कितनी कारीगरी की चीज़ें, हस्तकला की चीज़ें पश्चिम में रोम तक जाती थी और पूर्व में चीन तक जाती थी, सारे साउथ ईस्ट एशिया में आगे बढ़ा हुआ था भारत। ये कलाएं सिखाई जाती थी, विद्यालयों में सिखाई जाती थी। विशाखा की का वर्णन आता है और मल्लिका का वर्णन आता है, इन दोनों के पास चूनर थी, ओढ़नी थी जो सोने और चांदी के तार से बुनी हुई और उसमें हीरे मोती लगे हुए, इतनी बेहतरीन कला कि उस जमाने में उसकी कीमत हर एक आदमी उतनी कीमती वैसी चूनरी कोई पहन नहीं सकता, पहना नहीं सकता, इतनी बड़ी कला उसमें थी, इसलिए उसकी इतनी कीमत थी। और शस्त्र विद्या में ऐसे निपुण थे, शस्त्र विद्या में निपुण थे, हमारे पास उदाहरण है उसके, जैसे लिच्छवी का महाली, लिच्छवी का सेनापति, कौशल का सेनापति बंधुल, कौशल का राजा प्रसेनजीत, किस कदर वहाँ से शस्त्र विद्या सीख करके आए और अपने जीवन में उसे प्रकट किया। वैसे आयुर्वेद जीवक, आयुर्वेद में इतना परफेक्ट, सर्जरी में भी इतना परफेक्ट, बाकी हर तरह से दवा देकर के रोग को दूर करने में भी इतना परफेक्ट, आश्चर्य होता पढ़ करके कि जब कब्ज हो जाए, जुलाब दे, तो किसी तरह का रसायन उसके पास था, वो केवल सुंघा दे, बस सूंघे कि जुलाब हो गया। तो भारत कितना उन्नत था उस समय, हर बात में कितना उन्नत था। ऐसे ही उसके बाद भी हम देखते हैं अशोक के समय, अशोक के समय जो वास्तुकला हमारे सामने है, ये स्तंभ, इतने विशाल स्तंभ, कितने चिकने, और उसके ऊपर जो सिंह या अन्य और जो पशुओं के उस पर बताए गए, और उस पर धर्मचक्र रखा गया, कितनी बड़ी कलाकृति, वर्ल्ड की महत्वपूर्ण कलाकृति। इसी तरह से लोह स्तंभ खड़ा किया दिल्ली में, ऐसे लोहे से बना हुआ, उसमें ऐसी धातु मिक्स है कि 2000 वर्षों से ऊपर हो गया, उसको जंग नहीं लगता। उन्नत थी भारत की कला, बहुत उन्नत थी, लोग सीखते थे। आज भी यही होना चाहिए कि हर क्षेत्र में आगे बढ़े। सिद्धार्थ स्वयं परीक्षा हुई, एक कंपटीशन हुआ कि ये आदमी कैसी शस्त्र विद्या जानता है, सबसे आगे निकल गया, धनुर्विद्या में सबसे आगे निकल गया, शब्द भेदी, केवल शब्द सुनकर के तीर छोड़ेगा तो लगेगा उसको जाकर के, बाल भेदी, बाल केवल खड़ा है और उसको काटना है तो उतना भी काट देगा उससे, कितना आगे बढ़ गया। तो हर कला में इतना एक्सपर्ट है, ये देश की विशेषता थी और आज भी होनी चाहिए कि एक और हमें साधारण शिक्षा जो है, बुद्धि की शिक्षा है वो भी हो, और दूसरी ओर हमें शिल्प की भी शिक्षा हो। बुद्ध को कितना ज्ञान, घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गया, पर अपने गृहस्थ जीवन में 29 वर्ष तक गृहस्थ रहा, तो खूब शिक्षा प्राप्त की, राज्य कैसे करना चाहिए इसकी शिक्षा प्राप्त की, सरहद पर दुश्मन आता है तो कैसे रक्षा करनी चाहिए उसकी शिक्षा प्राप्त की। एक अवसर पर वो बताता है किसी राजा को कि सरहद पर हमला हो तो कैसे तुम रक्षा करोगे, किस तरह का किला बनाओगे। उसका जो विवरण है वो देख करके रोमांच होता है कि ये व्यक्ति एक ओर धर्म में इतना ऊंचा उठा हुआ, दूसरी ओर लौकिक क्षेत्र में भी इतना जानकार है। ऐसी सेना, ऐसे शस्त्र। पढ़ते पढ़ते तो एक वाक्य ऐसा आया कि आजकल जो ये कमांडो होते हैं, और कमांडो का भी वर्णन है, सेना में कुछ कमांडो ऐसे हैं जो छलांग लगा करके दूसरी सेना में चले जाएंगे और दूसरी सेना के अमुक आदमी का सिर काट के लाना है काट के ले आएंगे, अमुक आदमी के हाथ में जो हथियार है वो काट के लाना है ले आएंगे। कितने डिटेल से युद्ध कला, सुरक्षा कला, हर क्षेत्र में और लौकिक क्षेत्र में भी। भगवान का एक शिष्य चंपा का सेठ मेढ़ा, वो अपने खेत में जो हल चलाता था उसके हर हल में 7 फल होते थे, तो एक हल 7 हलों का काम करता था, लोग देखने जाते थे। ये उस समय के भारत की कला। ऐसा चूल्हा बनाया कि जिस पर 7 बड़े बड़े बर्तन रखे जा सके, तो 7 बर्तनों में एक साथ भात पक रहे हैं। ये कला थी भारत की। ये कला आज जो दुनिया में जिस ढंग की कलाएं चली हैं उस सब में भी भारत को आगे आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। गृहस्थ को दोनों क्षेत्र में, एक और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, एक और कला कौशल के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में आगे आना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन सार्थक होगा। गृहस्थ के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कलाएं सीखे, टेक्नोलॉजी सीखे, लेकिन उसका दुरुपयोग न हो। भिक्षुओं के लिए तो मना किया कि तुम किसी टेक्नोलॉजी में, शिल्प कला में बिल्कुल नहीं जाना। घर बार किस लिए छोड़ा है कि अंतर्मुखी होकर के सारे विकारों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचो जहां नितांत विमुक्त हो गए, ताकि औरों को भी मुक्ति का रास्ता दिखा सको। यही काम है तुम्हारा, इसी जीवन में, अपने जीवन को इसी लक्ष्य से तूने घर छोड़ा है। तुझे और कोई आजीविका क्यों नहीं करनी है, तो इसलिए आजीविका या कोई शिल्प सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भिक्षु जिसको पहले से ज्ञान है इस बात का, जानता है युद्ध कला को, तो एक प्रसंग ऐसा आता है कि उनके दो भिक्षु आपस में बात कर रहे हैं। राजा प्रसेनजीत युद्ध में जाता है, अजातशत्रु से हार कर आता है। ये चर्चा करते हैं कि उसको पूरी युद्ध कला नहीं आती रे, क्यों हार गया? इसलिए हार गया कि उसको युद्ध कला में निपुणता नहीं है, नहीं तो दुश्मन की सेना जब आए तो इस तरह से उसे घेरना चाहिए, ऐसा व्यूह करना चाहिए, इस चक्रव्यूह में, शकट व्यूह में अगर वो फंस जाएंगे तो उनके सेनापति को पकड़ करके घर में ला सकते हो, सेना अपने आप हार जाएगी। माने इतनी डिटेल उनके पास है। यदि भी भिक्षु है उसको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके देश का राजा इस समय संकट में है तो बैठे बात करते हैं। वो बात सुन ली, राजा के किसी जासूस ने सुन ली, राजा तक पहुंचाई और वो जीत गया। माने देश में कितनी कलाएं थी, उन सारी कलाओं में परफेक्ट होना चाहिए, और आज के युग में जो कलाएं हैं उन कलाओं में परफेक्ट होना चाहिए। आज केवल पढ़ लिख करके ही हम BA MA होकर ना रह जाएं, जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें भी हमारे बच्चों को तैयार करना चाहिए। उनको जीवन जीना है गृहस्थ का, तो हर क्षेत्र में उनको सफलता मिले, कंप्यूटर की शिक्षा हो, सॉफ्टवेयर की शिक्षा हो, इंटरनेट की शिक्षा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा हो, सब में परफेक्ट होना चाहिए, तो अपना जीवन भी सुखी होगा और काम आएगा, देश के काम आएगा, लोगों के काम आएगा, तो उपयोगी हो, अपने भरण पोषण के लिए भी उपयोगी हो और दूसरों के भी काम आए, नुकसान न कर दे। कोई टेक्नोलॉजी जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ऐसे शिल्प में न पड़ जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि साथ साथ चरित्र निर्माण हो, शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण हो, स्कूलों में, कॉलेजों में, जहां पर पढ़ाई के साथ साथ एक पीरियड होता है जिसे कहते हैं PT का पीरियड, माने फिजिकल ट्रेनिंग, थोड़ी बहुत कसरत करनी, व्यायाम करनी सिखाई जाती है। उसके साथ साथ एक पीरियड होना चाहिए एमटी का, मेंटल ट्रेनिंग का। विद्यार्थियों को चाहे वो स्कूल के हैं चाहे वो कॉलेज के हैं, उसी जीवन में मेंटल ट्रेनिंग उनको मिले। मन को कैसे वश में करें, मन को कैसे निर्मल करें, इसकी ट्रेनिंग रोज, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग वैसे मेंटल ट्रेनिंग। तो फिर जो कुछ सीखा है उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि अपने विद्यार्थी जीवन में ही चरित्र को महत्व देने लगा, चरित्र को महत्व देते हुए आगे बढ़ा, तो ऐसा काम कर नहीं सकेगा। अन्यथा तो जो आज की टेक्नोलॉजी है उसका कितना दुरुपयोग भी हो सकता है, होता है। जैसे न्यूक्लियर साइंस है, कितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। केमिकल है, कितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। बायोलॉजिकल है, कितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। और एक तो बहुत शर्मनाक स्थिति है कि इंटरनेट का कितना बड़ा दुरुपयोग। अरे, जिस इंटरनेट से लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को अच्छी जानकारी हो, उसके जगह कैसा दुरुपयोग होने लगा? क्या दिखाया जा रहा है, क्या निर्माण हो रहा है? प्रोण ही प्रोण। और लोगों में कैसे कैसे विषय वासना की ओर लोगों को धकेला जाए? चरित्रहीनता ही चरित्रहीनता, कैसे चरित्र का निर्माण होगा? तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो लोगों के जीवन के लिए घातक है, कितने लोगों की मृत्यु का कारण बन सकती है, उससे बचें। इस तरह की टेक्नोलॉजी जो लोगों के चरित्र को दूषित कर सकती है, उससे बचें। तो ये सारा कुछ तब होगा जबकि स्कूली जीवन में ही, विद्यार्थी जीवन में ही सीखेंगे। और मैं तो कहूँ उससे ज़्यादा, माता पिता घर में जब रहते हैं तो घर का वातावरण कैसा, माता पिता की बातचीत कैसी, कैसे रहते हैं वो, माता पिता चरित्रवान हैं, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा ही। और छोटी उम्र में जो प्रभाव पड़ गया उसका असर आगे तक रहेगा। माता पिता दुष्चरित्र हैं, घर में जो हो रहा है वो धर्म विरुद्ध काम हो रहा है, तो बच्चों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो ऐसा पड़ेगा कि जीवन में चरित्रवान हो ही नहीं सकते, दुष्चरित्र ही होंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बचपन से ही हम बहुश्रुत भी करें, सब तरह का ज्ञान भी बच्चों को दें, शिल्प भी दें, उसके साथ साथ चरित्र भी दें। अगर धर्म ठीक से नहीं दिया गया और धर्म धारण करे ये विद्या नहीं दी गई, आत्ममुखी होकर के अपने आप को देखते देखते अपने विकारों को दूर करने की सही विद्या नहीं दी गई, तो सही माने में चरित्रवान नहीं हो सकते। ऊपर ऊपर से भले चरित्रवान हो जाएं, लेकिन न जाने कब ऐसा काम कर बैठेंगे वाणी से या शरीर से जो कि हानिकारक होगा। तो बड़ी समझदारी के साथ इन दोनों को, बहुश्रुत को भी और शिल्प को भी, खूब परफेक्ट करना है। हर गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक, बहुत मंगलकारी, बहुत कल्याणकारी।